कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो अध्याय एक हम लोग ले रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। तो छह लक्षण हम लोगों ने बताए हैं शुद्ध भक्ति के, उसमें चार जो लक्षण है उसका हमने वर्णन किया है और बाकी दो लक्षण जो प्रेम भक्ति के लक्षण है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने कौन सी भक्ति का लक्षण चर्चा किया था? भाव भक्ति का। ठीक है, उसमें से आपसे कुछ पूछते हैं तो तैयार रहिए आप। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जो पहला लक्षण है लघु, आपको हिंट दे रहे हैं और आप बताइए। टेक्निकल टर्म भी बता सकते हैं और टेक्निकल नहीं बता सकते हैं, संस्कृत वर्ड नहीं बता सकते हैं तो आप इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। डिराइड्स दी हैप्पीनेस ऑफ, हाथ खड़ा करेंगे फिर बताएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है ना, हाथ खड़ा करिए फिर बताइए। हाँ बोलिए। और संस्कृत में मोक्ष लघुताकृत, गुड, ये भाव भक्ति का लक्षण है। और उसके बाद दूसरा सुख, माता जी बोलिए, सुदुर्लभ, डिफिकल्ट, हाथ खड़ा करके बताइए, डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है, सुदुर्लभ जो है उसमें दो कारण बताए गए कि क्या कारण है कि शुद्ध भक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस इज एक्सट्रीमली रेयर, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है शुद्ध भक्ति और बहुत मुश्किल है इसको प्राप्त करना, दुर्लभ भी है और बहुत कठिन है इसको प्राप्त करना। तो ये दो कारण क्या हैं? हाँ प्रभु जी बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई दोहरा सकते हैं जिन्होंने जो कहा? हाँ विशाल, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कौन से लक्षण है, किस भक्ति के लक्षण है? भाव भक्ति के लक्षण। ठीक, तो भाव भक्ति में कितने लक्षण पाए जाते हैं कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करना है। भाव भक्ति में कितने लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? ना शुरू से बताइए। साधन भक्ति के दो लक्षण क्या है? हाँ, दूसरा शुभदा, और तीसरा चौथा, तो ये कितने लक्षण हो गए? किसके लक्षण है? भाव भक्ति। साधन भक्ति में कितने लक्षण है? दो। कौन से हैं? क्लेशाग्नि और शुभदा। ठीक है, क्लियर हो गया। भाव भक्ति में चार लक्षण है और साधन भक्ति में दो लक्षण है। और हम प्रेम भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम भक्ति के यहाँ पे दो लक्षण दिए गए हैं और इसका टेक्निकल तो हम बताया गया दो लक्षण के जो पहला है उसका नाम है सांदर आनंद विशेषात्मा। बोर्ड नहीं है ना हमारे पास, एक व्हाइट बोर्ड भी रखी है, अगली बार से व्हाइट बोर्ड लिखे, कई बार टेक्निकल टर्म होता है लिखना पड़ता है। सांदर आनंद विशेष आत्मा, सांदर आनंद, सांद्रानंद, 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 सांद्रानंद विशेष आत्मा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड ब्लिस, इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड ब्लिस इंग्लिश में। अगर हिंदी में नहीं लिख, संस्कृत में नहीं लिख सकते तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड ब्लिस, तो प्रेम भक्ति जो है इतना कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब है जैसे जैसे कंडेंस मिल्क भी बोलते हैं ना, दूध बड़ा गाढ़ा है, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड। इसी तरह से जैसे बेल मेटल होता है या लोहे का कोई भी होता है, मेटल होता है जैसे लोहे का बर्तन है या लोहे का कुछ भी है, उसमें से आप सुई घुसाना चाहें घुसेगा नहीं घुसेगा। तो प्रेम भक्ति भी ऐसा है, जब प्रेम जागृत हो जाता है, प्रेमा भक्ति में किस स्तर पर हम पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, रंच मात्र भी बताया गया यहां पर, इंद्र तृप्ति का आभास तक नहीं होता है, रंच मात्र भी, टिंच भी नहीं होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश आ जाते। ये वास्तव में स्वरूप सिद्धि की अवस्था है। जब आप भगवान की प्रेम लीलाओं में प्रवेश पाते हैं, नित्य लीलाओं में प्रवेश पाते हैं और भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं, भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति ये राग के स्तर पर होती है। ठीक है, साधन की अवस्था में इसको रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति दो प्रकार की है, साधन भक्ति के लक्षण बताए थे ना हमने शुरू में, तो साधन भक्ति दो प्रकार के हैं। पहला है वैरी साधन भक्ति और दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति। ठीक है, लोभ के स्तर पर जब भक्त पहुंचता है, लोभ यानी कि रुचि, निष्ठा प्राप्त करने पर अगला जो स्टेप है भक्ति का वो क्या है, रुचि, लोभ। लोभ के स्तर पहुंचने पर क्या होता है, भक्त को रुचि आती है। क्या रुचि आती है, कृष्ण की लीलाओं के प्रति रुचि आती है। लोभ जागृत होता है किसी एक नित्य पार्षद के बारे में सुनने का, उसकी सेवाओं के बारे में श्रवण करने का लोभ जागृत होता है, उसका सानिध्य प्राप्त करने का लोभ जागृत होता है, उस नित्य पार्षद का सानिध्य संग की लालसा जागृत होती है, लोभ जागृत होता है। लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यत कुतो भी लभ्यते। श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति रस जो है वो इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हो सकता, लाखों करोड़ों जन्मों की सुकृति के बाद भी कृष्ण भक्ति रस नहीं प्राप्त हो सकता। ये कैसे प्राप्त होगा फिर, लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। लौल्यम, लौल्यम का मतलब क्या है, इंटेंस ग्रीड, स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसका अंग्रेजी में शब्द है लेकिन इसका कोई सही शब्द नहीं है अंग्रेजी में लौल्यम का, लालसा मई प्रार्थना, आपने सुना है नरोत्तम दास ठाकुर कि प्रार्थना में एक प्रार्थना आता है लालसामयी प्रार्थना, एक होता है प्रार्थना दैन्य बोधिका प्रार्थना, एक होती है प्रार्थना लालसामयी प्रार्थना। दैन्य बोधिका प्रार्थना का मतलब क्या है? दीनहीन समझकर अपने को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वैदिक भक्ति में इस प्रकार की प्रार्थना के लिए सुझाव दिया गया, दैन्य बोधिक प्रार्थना। इधर दरवाजा बंद करने वाला प्रसाद माल वाला, लेकिन लोभ की अवस्था में जब लोभ के स्तर पर कोई पहुंच जाता है वहां से उसकी प्रार्थना कैसी प्रार्थना शुरू हो जाती है? लालसामयी। कौन सी प्रार्थना? लालसामयी प्रार्थना। जैसे सुबह जो तुलसी आरती हम गाते हैं, प्रारंभिक भक्त भी गाते हैं, वो प्रार्थना है, वो कौन सी प्रार्थना है? हाँ, हालांकि हमारे अंदर कोई लोभ नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने फिर भी कृपा की हमारे ऊपर कि हमें ऐसी प्रार्थना दी है। ये जो राधा माधव कुंज बिहारी गाते हैं, ये भी एक तरह से प्रार्थना है। राधा माधव कुंज बिहारी, नए भक्त भी गाते हैं इसको। हम गुरुवाष्टकम गाते हैं, निकुंज योनो रति केली सिद्धये या लिभिर युक्तिरपेक्षणीय तत्राति दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये सब क्या है? गुरु की वंदना कर रहे हैं। श्री राधिका मा धवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। विश्व विश्वनाथ की ठाकुर ने लिखा है कि गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं और गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोलुपता रहती है गुरुदेव को हमेशा, हर पल भगवान श्री कृष्ण के यानी राधा माधव के नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं का आस्वादन करने की प्रतिक्षण लोलुपता रहती है। किसको रहती है? हमें नहीं, गुरुदेव को। ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। गुरु अष्टकम गाना नहीं है सिर्फ, उसका अर्थ भी समझना है। अर्थ ज्यादा जरूरी है ट्यून से, राग रागनी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इन प्रार्थनाओं का अर्थ समझना। अष्टकम कितने सारे हैं, इन सबको पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ जानना चाहिए, फिर गाना चाहिए। ऐसे तोते की तरह नहीं गाना है। जितना अर्थ समझ कर गाएंगे उतना आप गुरु अष्टकम में भाग लेंगे, या तो दूर खड़े रहेंगे खंभे की तरह। तो ये श्री राधिका मा धवयोर अपार, लोलुपता रहती है। ये लोलुपता हमारे अंदर नहीं है तो गुरुदेव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे भीतर भी इस प्रकार की लोलुपता आ जाए, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में लालसा में प्रार्थना का मतलब क्या है? मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, प्रार्थना है ना ये, मेरा मेरी अभिलाषा क्या है कि विलास कुंज में मुझे वास मिले। आप तो वैदिक भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये विलास कुंज क्या है? नयने हिरिबो सदा युगल रूप राशि, मतलब नयने हिरिबो का मतलब है हमेशा मैं इन नयनों के द्वारा आपका दर्शन कर सकूं, राधा कृष्ण का दर्शन कर सकूं। विलास कुंज में, इस निकुंज में, निष्कुंज में आप विलास करते हैं, वहां पे उसमें आप उनका आपका दर्शन कर सको। ये कौन सी प्रार्थना है? लालसा में प्रार्थना, इसको लोभ कहते हैं। लोभ जो है भक्ति की वो सीढ़ी है जहां से हम लोग रागानुगा साधन भजन शुरू करते हैं। हालांकि यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं, आगे का अध्याय में आएगा, लेकिन पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि दूसरी बार जब बताएंगे तो पहले से आपको पता होना चाहिए। जितनी बार हम सुनेंगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा, ठीक है ना? तो रागानुगा ये भी एक साधना है। रागानुगा भक्ति क्या है? ये भी एक साधना है। ये परफेक्शन का स्टेज नहीं है, परफेक्शन का स्टेज नहीं है, क्योंकि लोभ की अवस्था में आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, आपको पता नहीं आपका स्वरूप क्या है। लोभ की अवस्था में नहीं पता होता है, रुचि की अवस्था में हम स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मेरे स्वरूप क्या है। भगवान कृष्ण की लीला में इसका ज्ञात नहीं होता, लेकिन उन लीलाओं में किसी एक पार्षद के प्रति आकर्षण जागृत होता है, किसी विशेष लीला स्थली के प्रति आकर्षण जागृत होता है। ऐसे कई बार भक्त लोग नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, उनसे पूछा जाता है कैसे लगा आपको ब्रजमंडल परिक्रमा, उन्होंने बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ गए थे? द्वादश वनों में गए थे। कौन कौन सी लीला स्थली आपको अच्छी लगी? तो अधिकांश भक्त बोलते हैं सब अच्छा लगा हमें। इसका मतलब अभी कोई लोभ नहीं है, अभी ऐसे ही है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो चलने दीजिए उसको, और परिक्रमा करो, हर साल जाओ और परिक्रमा करो, और श्रीमद् भागवत का अध्ययन श्रवण करो, दशम स्कंद की लीलाएं पढ़ो कृष्णा मुख से। पढ़ते पढ़ते क्या होगा? नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, नैष्ठिकी भक्ति जागृत हो जाएगी। फिर नित्यम भागवत सेवा से उसके बाद लोभ जागृत होने लगेगा धीरे धीरे। शुद्ध भक्ति की जब कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, लोभ की अवस्था बहुत उन्नत अवस्था है, भक्ति बहुत एडवांस स्टेज है भक्ति का ये, क्योंकि यहां से आपका आपका जो साधना है आपकी साधना ही बदल जाती है, साधना का जो प्रोसेस है वो बदलने लगता है। इसे लोभ का जो स्टेज है बड़ा एडवांस स्टेज है, इसलिए कोई निष्ठा के स्टेज पर पहुंच जाए इससे पहले आध्यात्मिक जीवन में, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब जाके शुद्ध भक्ति के जो दो लक्षण है, पहले लक्षण प्रकट होंगे जिसकी हमने चर्चा की है ना, क्लेशाग्नि और शुभदा। तो लोक की अवस्था के लिए हमें प्रार्थना करना है, तो उससे पहले हमें निष्ठा के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, अनर्थों से निवृत्त होना पड़ेगा। वहां से अगर आपका आकर्षण वैकुंठ धाम के प्रति है, वैकुंठ में जो नित्य पार्षद है, नारद जी हैं, जय विजय हैं वहां के पार्षद, ऐसा वहां के पार्षद है ना, नंद सुनंद है, और अन्य पार्षद हैं, गरुड़ जी हैं, अनंत शेष हैं, ये सब पार्षद हैं भगवान के, भगवान की सेवा में लगे हैं। शेष अनंत शेष तो भगवान के विस्तार है, लेकिन वहां पे वो सेवा कर रहे हैं भगवान की सेवा में। तो वैकुंठ के प्रति अगर आकर्षण है तो आप वहां से वैकुंठ की ओर जाने चाहेंगे, वैकुंठ के बारे में सुनना चाहेंगे, नारद जी के बारे में अधिक सुनना चाहेंगे, नारद जी के प्रति आपका आकर्षण होगा, नारद जी कैसे सेवा करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, नारद जी कैसे गुणगान करते हैं, इस प्रकार का लोभ जागृत होगा, है ना। श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो नारद जी का कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगेगा, इस तरह से, क्योंकि वो वैकुंठ में सेवा करते हैं इस कारण से, तो उस तरह का जो लोभ जागृत होगा, फिर आसक्ति जागृत होगी। अगला स्टेप, आसक्ति की अवस्था में आप आपका जो स्वरूप है उसका उसका आभास आपको होने लग जाएगा, स्वरूप का आभास आपको होने लग जाएगा आसक्ति की स्थिति में, आइडिया होने लग जाएगा कि आपका ये स्वरूप है, और आपका जो आकर्षण वास्तव में वैकुंठ का है, आप वैकुंठ के हैं वास्तव में, आपका स्वरूप जो है वो वैकुंठ का है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी भाव सेवा शुरू नहीं होगी, भाव भक्ति के प्लेटफॉर्म पूरी तरह से पहुंचे नहीं, और जब भाव जागृत होगा तो वैकुंठ के प्रति भाव जागृत होगा, वैकुंठ प्रेम के प्रति भाव जागृत होगा, समझ रहे हैं आप। अगर वैकुंठ का प्रति आकर्षण है आपका, लेकिन राग जो शब्द है, रागानुगा जब कहते हैं शब्द, वो केवल ब्रज के लिए है, ये शब्द केवल ब्रज भक्ति के लिए है रागानुगा शब्द, क्योंकि इसमें वृंदावन के जो रागात्मिका भक्त हैं, नित्य पार्षद जो वृंदावन के हैं, कौन कौन है नित्य पार्षद वृंदावन के, कौन कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? नित्य पार्षद बताइए वृंदावन के कौन कौन है, नाम बताइए कुछ, नित्य पार्षद कौन है? हाँ जी, ललिता विशाखा और सुबल सखा, श्रीधाम सखा और नंद महाराज, यशोदा माता यशोदा, मधुमंगल, हाँ ये सब नित्य पार्षद हैं। ये कौन से भक्त हैं? ये सब रागात्मिका भक्त हैं, ये रागानु का भक्त नहीं है, ये किसी के अनुगत नहीं है, ये नित्य पार्षद हैं, इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। तो आप क्या करते हैं, एक वैष्णव के अनुगत होकर या रागात्मिका भक्त के अनुगत होकर, रागात्मिका भक्त के अनुगत होकर या किसी वैष्णव के अनुगत होकर जो उस रागात्मिका भक्त के अनुगत है, उसके अनुगत जब हम भजन करेंगे राग मार्ग में, तो ऐसे भजन को क्या कहते हैं, ऐसी साधना को क्या कहेंगे, रागानुगा साधना कहेंगे, रागानुगा साधना, रागानुगा साधना। ठीक है, अब क्लियर है, बिल्कुल अब सर है ना, अब क्लियर है। तो इस तरह जो हम अभी प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये प्रेम भक्ति दो प्रकार की हुई। फिर भाव भक्ति का अगला शब्द क्या है, प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति दो प्रकार की कैसे हो गई, एक प्रेम भक्ति कहां के लिए, एक ब्रज के लिए, दूसरा वैकुंठ, वैकुंठ वैकुंठ के लिए। तो भाव भक्ति से प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति यहां पर जो चर्चा की जा रही है, यहां पर जो ऋषि रूप गोस्वामी ने चर्चा की है, वो बता रहे हैं सांदरानंद विशेषात्मा के बारे में। तो इसमें कई प्रकार की टीका है शिल जी गोस्वामी की, बहुत सारी टीका है। एक जगह बता रहे हैं, जो भक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, भक्ति रसामृत जिसे कहते हैं, सिंधु का जो आनंद प्राप्त होता है जब, तो ब्रह्मा जी का जीवन जो है, ब्रह्मा जी का जो जीवन है आधा जीवन, उसकी तुलना इस भक्ति रसाम सिंधु के एक बूंद से भी नहीं की जा सकती है। सिंधु मतलब सागर, श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने लिखा ना, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, इसलिए लिखा है। वो एक बिंदु भी आ जाए, एक ड्रॉप भी अगर निकाल लें उस महासागर से, रसामृत सिंधु से, एक हम लोग बिंदु भी निकाल लें, एक ड्रॉप भी निकाल लें, तो उसकी तुलना ब्रह्मा जी के, या ब्रह्मा जी की जो जो तुलना, ब्रह्मा जी का जो आधा जीवन है उसकी तुलना जो है एक बूंद से भी नहीं कर सकते हम। भक्ति रसाम सिंधु का जो एक बूंद है उससे भी हम नहीं तुलना नहीं कर सकते, मतलब इतना आनंद प्राप्त होता है जो यहां पर हम लोग बता नहीं सकते हैं, जब जो बात कहीं नहीं जा सकती। वास्तव में भक्ति रसाम सिंधु ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा विज्ञान है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। इसमें एक बात आप समझिएगा ध्यान से, इसमें आपको उतना ही समझ में आएगा जितना आपका स्टेज है। भक्ति रसाम सिंधु आपको वहीं तक समझ में आएगा जो आपका, जहां तक आपका स्टेज, क्योंकि ये साइंस है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसी भगवद गीता भी है, ऐसी श्रीमद भागवत भी है, ऐसी श्री चैतन्य चरितामृत भी है, जिन्होंने प्रयोजन तत्व, प्रयोजन प्राप्त कर लिया है, उसी चैतन्य चरितामृत को सबसे अच्छा समझ सकते हैं। जिनका संबंध ज्ञान और अविधेय तत्व को जो समझ चुके हैं, वो श्रीमद् भागवत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, जो प्रयोजन तत्व प्राप्त कर चुके हैं वो तो और भी अच्छा समझ सकते हैं श्रीमद् भागवत। और भगवद गीता खासकर जिनका संबंध ज्ञान जागृत हो गया है, वो भगवद गीता को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिसने समझ लिया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो भगवद गीता को समझ सकता है अच्छी तरह। तो ये कनेक्शन है भगवद गीता का, श्रीमद् भागवत का और श्री चैतन्य चरितामृत का, आपस का कनेक्शन ये है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व। यहां पे आगे बता रहे हैं, सम फॉर्चुनेट पीपल प्ले इन द स्वीट ओशन ऑफ योर टॉपिक्स एंड एंजॉय द ग्रेट प्लेस दे कंसिडर द हैप्पीनेस फ्रॉम अर्थ धर्म काम एंड मोक्ष टू बी एज इनसिग्निफिकेंट एज ग्रास। धर्म अर्थ काम मोक्ष की तुलना किसे की गई है, तिनके के सवाल, धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको चीटिंग प्रोसेस कहा गया, कैटव धर्म कहा गया श्रीमद् भागवत में, इसको चीटिंग रिलीजन कहा गया, क्योंकि वास्तविक जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, तो ये चीटिंग रिलीजन है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेष भाण, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेष भाण। वो विशेष भाण का मतलब क्या है, जैसे सोने का प्याला है दिया आपको लेकिन उसमें जहर है, पियेंगे आप? सोने का प्याला है पीजिए लेकिन जहर का एक बूंद है उसमें, एक जहर का बूंद डाल दिया दूध में, आप सोने के प्याले में दे रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए प्रभु। सोने का प्याला, तो इस वजह से इसको चीटिंग रिलीजन कहा गया। तो ये जो साधारण विशेष आत्मा का मतलब यही है कि जब कोई प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचता है तो उसको फिर इंद्र तृप्ति का आभास तक नहीं होता है। फिर बंद खुल गया, उधर से बंद करके आइए। प्रेम जागृत करना ये बहुत जरूरी है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। और प्रेम भक्ति के स्तर पर तो भगवान जो है पूर्ण तरह से बन जाते हैं। इसलिए जो दूसरा लक्षण है प्रेम भक्ति का, उसको कहा गया श्री कृष्ण आकर्षणी। दूसरा लक्षण क्या है प्रेम भक्ति का? श्री कृष्ण आकर्षणी, अट्रैक्ट श्री कृष्ण। कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है कृष्ण को? हु अट्रैक्ट कृष्ण द मोस्ट? श्रीमती राधारानी अट्रैक्ट कृष्ण द मोस्ट, क्योंकि लादनी शक्ति श्री कृष्ण की अपनी ही लादनी शक्ति जो है वो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात। तो ये जो लादनी शक्ति है ये स्वरूपनी श्रीमती राधारानी है। अब प्रश्न उठ सकता है कि राधारानी से आकर्षित होते हैं किन कारणों से? उनकी प्रेम की महिमा नहीं समझ पाते, श्री कृष्ण राधारानी की प्रेम की महिमा को नहीं समझ पाते। कितने विचित्र बात, श्रीमती राधारानी का जो मां भाव है उसको श्री कृष्ण नहीं समझ पाते। खासकर श्रीमती राधारानी का मां भाव श्री कृष्ण नहीं समझ पाते। और श्री कृष्ण के सौंदर्य को जिस तरह देखकर श्रीमती राधारानी आनंद प्राप्त कर रही है वो आनंद श्री कृष्ण नहीं प्राप्त करते हैं। द्वारका में एक बार उन्होंने अपने आप को देखा और खुद आकर्षित हो गए अपने रूप से, बोलते ये मेरा रूप है, ये कौन है? लेकिन जब श्रीमती राधारानी श्री कृष्ण को देखती हैं उनको ज्यादा आनंद आता है श्री कृष्ण से, ये कृष्ण नहीं समझ पा रहा। और उसके द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, श्रीमती राधारानी को जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद को नहीं समझ पाते हैं श्री कृष्ण। तो ऐसा क्यों? हम बोलते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण परम ईश्वर है, हम सर्व प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं। तो फिर क्या कारण है बताइए? अगर परम भगवान श्री कृष्ण है पूरे ब्रह्मांड के, वही ईश्वर है, बड़े बड़े देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, फिर यहां ऐसा क्यों हो रहा है श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधारानी से बंध जाते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सूरज और सूरज की रोशनी में कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद है। रोशनी को सूरज थोड़ा कहेंगे, लेकिन रोशनी को सूरज से अलग भी नहीं किया जा सकता। इस तरह से राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हैं, कृष्ण की अपनी ही स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। हाँ ये भी ठीक है, इम्परफेक्शन भी होना चाहिए, यही कृष्ण का परफेक्शन है, वो भी ठीक है, लेकिन और क्या स्पेसिफिकली बता सकते हैं? हाँ,
तो
लेकिन श्रीमती राधारानी पूर्ण रूप से बांध देती, लेकिन श्री कृष्ण जो है राधारानी के प्रेम को नहीं समझ पा रहे ना, इसका क्या कारण है? श्रीमती राधारानी के महाभाव को नहीं समझ पा रहे। गोपियों के पास भी महाभाव है, लेकिन जो श्रीमती राधारानी का मादनाख्य महाभाव है वो नहीं समझ पा रहे हैं श्री कृष्ण। तभी श्री कृष्ण को श्रीमती राधारानी के महाभाव का आश्रय लेना पड़ता है, उनकी कांति स्वीकार करते हैं, गौरव महाप्रभु के रूप में प्रकट होते। तो क्या कारण है? ऐसा क्यों करना पड़ रहा उनको? फिर वो परम भगवान कैसे हुए? श्रीमती राधारानी होनी चाहिए अल्टर में, राधारानी इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भाई यू आर सेइंग कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बताइए। माधुरी रस, श्री कृष्ण तो रसराज श्री कृष्ण है, रसिक शेखर कहा गया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का एक नाम है रसिक शेखर, रसिक शिरोमणि। तो फिर अगर वो रसिक शेखर है तो श्रीमती राधारानी के इस महाभाव को क्यों नहीं समझ पा रहे? उत्तर दीजिए। वो भी है तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस है ना। श्री कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, शक्ति तो उनकी है ना, हाईएस्ट कितना भी हो लेकिन शक्ति तो कृष्ण की है। शक्ति से शक्तिमान शक्तिशाली होता है, जिसकी शक्ति है वो शक्तिशाली है। यहां तो उल्टा हो रहा है, बताइए। हरे कृष्ण तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उत्तर दिया है, जैव धर्म में यही प्रश्न पूछा गया है। भक्तों ठाकुर कहते हैं ये श्री कृष्ण की इच्छा है, इसलिए परम इच्छा है उनकी। श्रीमती राधारानी के प्रेम से आकर्षित होकर श्री कृष्ण इस प्रकार इच्छा करते हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाते, ये उनकी इच्छा है। जब श्रीमती जैसे इस तरह से जैसे वात्सल्य प्रेम में देखिए, कृष्ण जो है वो बंधने के लिए तैयार हो गए। किसकी इच्छा है? कृष्ण की इच्छा है, और इच्छा ना हो तो फिर कभी नहीं बांध सकते उनको। तो माता यशोदा ने कितना प्रयास किया लेकिन कृष्ण जो है बंध नहीं रहे। लेकिन जब कृष्ण ने इच्छा की तो एकदम बंध गए। माता यशोदा के प्रेमा भक्ति ने श्री कृष्ण को बांध लिया। लेकिन जैसे ही जब निधिवन में आए, श्री कृष्ण लेट आए एक दिन रासलीला के लिए, तो राधारानी ने एकदम उनको बांध दिया, आते ही बांध दिया। कृष्ण को इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना भागने का मौका मिला, राधारानी ने तुरंत बांध दिया, तत्काल ही बांध दिया। लताओं पताओं से बांध दिया। इसलिए उनका नाम राधा दामोदर पड़ा। एक जगह यशोदा दामोदर और एक राधा दामोदर। तो प्रेम भक्ति जो है इस कारण से भी, क्योंकि प्रेम भक्ति के द्वारा कृष्ण बन जाते हैं और उसके बाद कृष्ण जो है पूर्ण रूप में अपने भक्तों की सेवा में रत रहते हैं। कृष्ण भी प्रेमयी सेवा करते हैं, कृष्ण भी अपने भक्तों से विरह महसूस करते हैं। द्वारका में रहते हुए भी श्री कृष्ण जो है वो ब्रजवासियों का चिंतन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी के साथ एक ही शैया में लेटे हैं लेकिन वहां गोपियों के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, बार बार राधा राधारानी का नामों का उच्चारण कर रहे हैं द्वारका में रहते हुए भी। तो ब्रज से विरह होता है श्री कृष्ण को, ब्रज के भक्तों से श्री कृष्ण को विरह होता है। तो ये सब प्रेम भक्ति की बातें हैं, बहुत ही उच्च कोटि की बातें हैं, साधारण चर्चा के लिए नहीं है। आजकल तो हम ऐसे ही आकर्षित हो जाते हैं, किसी ने दर्शन कर लिया विग्रह का, किसी ने मुंह हिलाया, किसी ने हाथ हिलाया विग्रह ने, इसी से हम आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने संस्था केवल इसके लिए नहीं बनाई है किसको क्या दर्शन हुए, है ना। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। आप सोचेंगे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्यों? कि प्रभुपाद चाहते थे हम लोग शास्त्र के आधार पर भक्ति को नापे। अपनी भक्ति को हम नापे कैसे? शास्त्रों के आधार पर, गुरु साधु और शास्त्र। साइंस है ये डिवोशनल सर्विस, ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। नहीं तो रोज क्या होगा, एक नई लीला सुनाएगा कोई आपको, एंड दिस विल बिकम अ चीप थिंग। डीटी वर्शिप विल बिकम चीप। इसलिए हमारे आचार्य लोग जो है ऐसी कोई घटना होती भी है तो उसको उसका प्रचार नहीं करते। जो उसका प्रचार कर रहा है अंदर नहीं है ज्यादा कुछ, जो प्रचार नहीं करते अंदर की बातें वो उसका वास्तव में भजन पका है, ये सीक्रेट। बाकी लोग प्रचार करते हैं वो अलग बात, क्योंकि भक्तों का गुणगान तो होता ही है, भक्तों का यश फैलेगा फैलेगा, भगवान ही अपने भक्तों का यश फैलाए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम लोग समझ पाते हैं कि षट गोस्वामी ने कैसे अपने विग्रहों से बात किया, उनकी सेवा की, है ना, और अन्य वैष्णव ने कैसे अन्य अन्य नाना प्रकार के विग्रहों से चर्चा की, उनसे बातें की। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को सुनने को मिला, है ना, प्राचीन घटनाएं जितनी भी है, पुरानी घटनाएं। लेकिन खुद अपने आप कोई भक्त इस तरह से बताता नहीं है, सबसे पहली बात यह है ना। ये पब्लिसिटी का काम नहीं है, प्रचार हमने करना है। जो भगवान ने संदेश दिया है उसका प्रचार करना है, अपने इंटरनल भजन का प्रचार नहीं करना है। नरोत्तमदास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बात बता दी, अपने भजनेर कथा यथा तथा ना कोई भी, अपने भजन की कथा सबको मत बताओ कि क्या तुम्हारा रिश्ता है डीटी के साथ, उन्होंने कब बोला, कब खाया, क्या सपना दिखाया। गुरु को बताइए बस, और गुरु आपको बताएंगे कहां था उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अदरवाइज एवरी डे आओ एक अनाउंसमेंट में एक नया लीला सुनेंगे आप, सुबह एक मंगल आरती में एक नया लीला, नई लीला आ जाएगी, उस घर में ये हुआ, इस घर में ये हुआ, इस घर में ये हुआ। जो वास्तव में बेचारे गंभीरता से सेवा कर रहे हैं उनका क्या हुआ? उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। जो वैष्णव लोग 30 साल 40 साल से सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, महापुरुष के आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं, 24 घंटे कृष्ण की सेवा में, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बताइए। वो क्यों नहीं बता रहे आपको? क्या उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ होगा? वो तो कभी नहीं बताते, वो तो एक साधारण भक्त की तरह रहते हैं, आपके साथ ही जप करते हैं बैठ के। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसान सुंद में इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए कोई भाव भक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है, एक्सटर्नली ही मस्ट एक्ट लाइक ए रेगुलेटेड डिवोटी, जस्ट लाइक ए नियोफाइट। ये रूप गोस्वामी ने इस प्रकार से सजेशन दिया है। तो इसलिए हमें आश्चर्यचकित नहीं होना है, और ना ही बातों को फैलाना है, और ना ही बातों को चीप बनाना है। मगर बात सच भी है मान लो, तब भी उसको वहीं तक रहना सीमित जहां तक है। नहीं तो सोचेंगे लोग हम भी, हमारे सामने भी, हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, और लोग गंभीरता से भजन करना छोड़ देंगे। तो प्रभुपाद ने कहा ये फैनेटिसिज्म नहीं है, सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। रिलीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड फिलॉसफी, अदरवाइज इट्स सेंटिमेंटलिज्म और फैनेटिसिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो हम लोग तो इन शास्त्रों के आधार पर, श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। नॉट दैट कि किसी ने क्या देखा और क्या सुना, हमें इसको कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है कि नहीं। अधिकांश जो अवस्थाएं आती है भाव की अवस्था में आती है, डीटी के साथ बात करना, डीटी के साथ रिलेट करना, डायरेक्ट बात करना। प्रभुपाद बात करते थे लेकिन प्रभुपाद का प्रचार नहीं करते थे। हमारे वैष्णव लोग बात करते हैं लेकिन इसका प्रचार नहीं करते। प्रभुपाद से एक बार पूछ लिया किसी ने भक्त ने, प्रभुपाद को बोलते देख लिया एक भक्त ने छुपके से, तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप क्या बोल रहे थे? प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं कहीं माया में ना गिर जाऊं। प्रभुपाद ने क्या बोला? हाँ, तो ताकि वो भक्त समझ जाए कि कि उसको किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। कि अगर बोलते हैं नहीं मैं कुछ और प्रार्थना कर रहा था कॉन्फिडेंशियल, और आप सबको जाके बताओ, इसकी सीडी बनाओ सर्कुलेट करो, क्या हमारे आचार्यों ने ऐसे किया है बताइए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, सतोवृत्ते वन मस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस, श्री रूप गोस्वामी ने बोला, तभी भक्ति आगे बढ़ेगी, नॉट बाय चीप सर्कुलेशन। इसलिए ये बहुत जरूरी है इन बातों का ध्यान रखना हमें, तो ये बहुत आवश्यक है। और यहां पर ये बता रहे हैं श्री कृष्ण आकर्षणी, तो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं और जो प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच चुके हैं, साधना सिद्ध हो चुके हैं, वो इस प्रकार भगवान को वशीभूत कर लेते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेकों वर्णन है, जिस तरह से किस तरह से भक्तों ने श्री कृष्ण को भाना अपने प्रेम के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो दूसरा है श्री कृष्ण आकर्षणी, तो यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, इससे पहले भी उदाहरण दिया गया था भाव भक्ति के इसमें प्रसंग में, कि किस तरह से बता रहे हैं, कि नारद जी बता रहे हैं कि कृष्ण जो है पांडवों के लिए दूध बनकर गए, कहां बन गए, हस्तिनापुर जहां बैठे हैं, तो पांडवों के लिए दूध बनकर गए कृष्ण जमीन मांगने के लिए कौरवों से, दुर्योधन से। तो कृष्ण जो है दूध बन जाते हैं, और ये उनकी महानता है। और इसी तरह से सखाओं के साथ श्री कृष्ण खेलते हैं, सखा लोग कृष्ण को हरा देते हैं, है ना, उनको कभी मुर्गा बनना पड़ता है, और सखा लोग देखकर हंसते हैं, कृष्ण एक साधारण बालक की तरह रोते हैं कि देखो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सब, अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते हैं। जब प्रेम भक्ति में, खासकर जो ब्रज का प्रेम है, इतना प्रबल है, कृष्ण को इस तरह से बांध लेता है कि कृष्ण अपना ऐश्वर्य भी दिखाते तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गिरिराज जी को उठाया गोवर्धन को, 7 दिन 7 रात कोई इसका गुणगान नहीं कर रहे कि देखो कितना भारी पर्वत उठा लिया, अगर हुआ भी है तो लोग भूल जाते हैं जल्दी, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन किसका गुणगान कर रहे थे, कृष्ण की सुंदरता का, कृष्ण के साथ वहां पर तो रसास्वादन हो रहा था, अनेकों रसों का आस्वादन हो रहा था श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि नाना प्रकार के भक्त, हर प्रकार के भक्त शांत रस में, सखी रस में, खासकर जो 4 रस हैं, दास्य रस, सखी रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस में स्थित जो भक्त हैं, वो सब आदान प्रदान कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ, 7 दिन 7 रात आनंद ले रहे हैं, और वहां पर किसी प्रकार का विरह नहीं हो रहा, 24 घंटे दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का, कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं, है कि नहीं। यहां तक कि ये बता रहे हैं कि गिरिराज जी को कृष्ण क्या उठाएंगे, गिरिराज जी को सारी शक्ति तो उनको श्रीमती राधारानी से मिल रही है, बार बार श्रीमती राधारानी की तरफ देख रहे हैं, है ना, क्योंकि बिना उनके शक्ति के, अंतरंगा शक्ति के, श्री कृष्ण जो है कोई लीला कर ही नहीं सकते। जैसे जगन्नाथ जी का जब रथ चलता है तो रथ के नीचे पहिए होते हैं ना, उसमें 16 स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स जानते ना, पहिए के बीच में 16 स्पोक्स होते हैं, तो ये 16 स्पोक्स कृष्ण की एनर्जीज हैं, इंटरनल एनर्जीज हैं, 16 एनर्जीज, इंटरनल पोटेंसीज को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे तो हम 3 प्रकार की शक्ति को सुनते हैं, सम्मित, लादिनी और संदिनी, लेकिन इंटरनल पोटेंसी को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 16 वेज ऑफ 16 वो हैं टाइप्स है इंटरनल पोटेंसी, ये 16 स्पोक्स की तुलना उससे की गई है। तो जब तक वो पहिए नहीं होंगे, यानी कि वो अंतरंगा शक्ति नहीं होगी, जगन्नाथ जी का रथ चल ही नहीं सकता, जगन्नाथ जी अपनी लीला नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कृष्ण के इस ऐश्वर्य को देखकर प्रभावित नहीं होते हैं ब्रजवासी, कितना ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया कृष्ण ने, किसी भी ऐश्वर्य से आकर्षण नहीं होते, और हर बार यही कहते हैं, हाँ गर्गाचार्य ने कहा था कि कृष्ण के पास, हमारे कृष्ण के पास किसके जैसे गुण होंगे, नारायण जैसे गुण होंगे, और नंद महाराज और माता यशोदा ये तो विष्णु की पूजा करते थे, ब्रज में लोग विष्णु की पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा कोई नहीं करता था। आप समझते हैं, आप जानते इस बात को, ब्रज में कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता, सब नारायण की विष्णु की पूजा करते खासकर उस समय, लेकिन कृष्ण से सब प्रेम करते थे। ये अंतर है। तो प्रेम भक्ति का मतलब होता है जहां पर आप स्वाभाविक रूप से प्रेम कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि कृष्ण जो है परम भगवान, खासकर जब ब्रज भाव है, ब्रज का प्रेम इस प्रकार का है। और ये जो प्रेम है कृष्ण को पूर्ण रूप से मान लेता है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि पूरा संसार मुझे वैदिक भक्ति के द्वारा मेरी पूजा करता है, निरंतर लोग मेरे सामने आके प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण जो है इतने संतुष्ट नहीं है सब देखकर कि लोग हमेशा आते हैं हाथ जोड़कर मेरे पास, लेकिन ये ब्रज के जो भक्त हैं इनके साथ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इनके साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा माता पिता है, हाँ ना, कोई गोपियां आती हैं, हाँ। तो ये इस प्रकार के जो रिश्ते हैं कृष्ण ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे बहुत ही एक निकृष्ट उदाहरण है समझने के लिए, जैसे बिल गेट्स है, बताया जाता है कि बिल गेट्स बहुत धनी व्यक्ति है संसार का, हाँ। और लेकिन वो क्या करता है, कई बार शाम को डिस्गाइस में वेश बदल कर कुछ दूसरे दोस्तों से मिलने जाता है और वो दोस्त जाते नहीं है कि बिल गेट्स है, पूरा मेकअप करके ड्रेस चेंज करके जाता है वो, तो लोग नहीं पहचान पाते उसको कि बिल गेट्स है, लेकिन वो कहता है वहां मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो कहता है मुझे ज्यादा वहां पर अच्छा लगता है, क्यों, वहां पर कोई मुझसे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं धनी हूं, लोग मुझसे मिलते हैं मेरे धन से नहीं, लेकिन जब मैं बिल गेट्स होता हूं तो सब मेरे पास आते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसा है। अब सुन रहे हैं, तो इसी तरह से कृष्ण भी सोच रहे हैं कि लोग मेरे पास अधिकांश हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आते हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण ज्यादा खुश हो रहे हैं जब कोई इनसे इस प्रकार के संबंध स्थापित करता है। तो प्रेम जो है वैकुंठ का भी हो सकता है, जहां पर मर्यादा पर प्रधान है, ऐश्वर्य की प्रधानता है वैकुंठ में और द्वारका में, लेकिन जहां तक ब्रज की बात है वहां पर माधुर्य की प्रधानता है और ऐश्वर्य ढका हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रज में ऐश्वर्य है ही नहीं। इस तरह से एक कटोरे में घी है, घी से ढका हुआ है कटोरा, और घी को जब निकालेंगे ऊपर से पूरा निकाल देंगे तो नीचे क्या देखेंगे आप, सोना मिलेगा। तो इसी तरह से पूरा ब्रज जो है माधुर्य से ढका हुआ है, इसका अर्थ नहीं कि वहां पर रत नहीं है, वहां पर धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, सब कुछ। एक बार एक गोस्वामी थे, नाम याद नहीं, जीव गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, वो राधा कुंड के तट पर भजन कर रहे थे। एक मुसलमान राजा आया अपने सैनिकों को लेकर और उसने कहा कि जल पीना है, हाथी लेकर आया हूं मैं और सैनिक भी है, उसे जल पीना चाहते हैं, पी लो, जल है राधा कुंड का, जल पी लो। तो उन्होंने कहा कि वहां तो इतना जल नहीं है, यहां तो इतना कोई नजर नहीं आ रहा कुछ खास, उधर जाके देखो सब देखने को मिलेगा। और जब वहां देखा उन्होंने तो उन्होंने क्या देखा कि राधा कुंड के तट में इतना ऐश्वर्य देखा, इतने प्रकार के जेम्स देखे, इतने प्रकार के रूबीज, एमराल्ड्स, डायमंड स्टडेड था सारा, वो देखे हैरान हुए देखकर। तो इस प्रकार है वृंदावन में ऐश्वर्य लेकिन ढका हुआ है। और ब्रज के भाव में लोग जब भगवान की सेवा करते हैं तो उससे ज्यादा श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं। ठीक है, यहीं पर हम विराम देते हैं, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। ब्रज के भक्त जो हैं, जो ब्रज के भक्त हैं, जो ब्रज के प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं, वो द्वारका भी जाना पसंद नहीं करते। मैं उसकी आत्मिका बुद्धि एक ही है गुरु नंदना, बहुशाकाय अनंतश्च बुद्धे व्यवसायिना। तो भक्ति की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो अन्य शाखाओं में नहीं जाते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि, अब ब्रज भक्ति करना चाहते हैं तो आपको द्वारका को भी त्यागना पड़ेगा, ये तो ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। जैसे राधारानी और ब्रजवासी जब कुरुक्षेत्र पहुंचे, कृष्ण बलराम सुभद्रा जी को एकाक देखा, रत्न जड़ित सिंहासन में यानी कि रथ पे चढ़े हुए थे और पूरा वेशभूषा राज वेशभूषा थी उनकी, मोर मुकुट नहीं था, वंशी नहीं थी, लेकिन राधारानी देखकर ये खुश नहीं हुए। बोलते मैं वही राधा हूं, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन मुझे यहां तो रहकर वृंदावन का स्मरण हो रहा है, यमुना जी का स्मरण हो रहा है, वंशी भट्ट का स्मरण हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो वही हैं, मैं वही हूं। तो द्वारका के ऐश्वर्य को देखकर ब्रज के लोग आकर्षित नहीं होते। एक बार एक ये असली कथा है, एक ब्रज के एक भक्त थे और अष्टकाली लीला स्मरण वो करते थे। तो एक दिन किसी ने बताया कि द्वारका भी जाना चाहिए आपको, देख कर तो आइए कैसा है, आप तो ब्रज में रहते, कभी कभी आप और तीर्थ स्थानों में जाइए। तो उन्होंने द्वारका जाने का विचार किया। द्वारका जब जाकर आए, वापस जब आए तो दोबारा उन्होंने भजन शुरू किया तो उनको स्मरण ही नहीं हो रहा था किसी चीज का, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण नहीं हो रहा था। वो बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। और पास में निकट में एक और बाबा जी थे, वो बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे वो भी। तो वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या अपराध किया है, मैं जब से द्वारका से आया हूं मुझे लीलाओं का स्मरण ही नहीं हो रहा है। बोलते हैं दूर हो जाओ, वो बाबा जी कहते हैं तुम दूर हो जाओ, मेरे पास मत आना, तुम्हारा संग करूंगा तो मुझे भी लीला का स्मरण नहीं होगा। बोलते ऐसा क्या हुआ? राधारानी जो है खुश नहीं है, आप द्वारका क्यों गए? तो वो इतना विरह महसूस करते हैं और विरह के कारण जो है उनका शरीर जो है जल जाता है, उनका देह जल गया, उनका शरीर जल जाता है और उसके बाद फिर वो नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं सेपरेशन के कारण। कहने का अर्थ यह है सिंगल पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसी की तो हम चर्चा कर रहे हैं शुरू से, यही तो सब्जेक्ट मैटर है भक्ति रसाम संधों का। शुरू में ही हमने बता दिया ये है व्यवस्थित आत्मिक बुद्धि, लेकिन ये जो स्टेज है बहुत एडवांस स्टेज है। इस प्रकार की व्यवस्थित आत्मिक बुद्धि तब आती है जब कोई वास्तव मध्यम अधिकारी लेवल पर पहुंचता है, उससे बहुत ज्यादा आपको ये इतने एडवांस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है कि शुरू में नहीं समझ पाएंगे चीजें। जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, तो जगन्नाथपुरी जब जाते हैं आप बताइए जगन्नाथपुरी का स्थान ऊंचा है या नवद्वीप का स्थान ऊंचा है? नवद्वीप का स्थान ऊंचा है, क्योंकि जगन्नाथपुरी क्या है? द्वारका है। और यह समझकर कोई अगर जगन्नाथपुरी जाता है तो उसको ब्रज प्रेम नहीं मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गए, जब उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, पुरी के मंदिर में गए, तो उन्होंने सिर्फ जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उन्होंने बलदेव सुभद्रा जी का भी दर्शन नहीं किया। और जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो किसका दर्शन किया? उन्होंने श्याम सुंदर का दर्शन किया, जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया है, द्वारकाधीश्वर का दर्शन नहीं किया उन्होंने। उसी भाव से वहां गए थे, जिस तरह से राधारानी गई थी कुरुक्षेत्र, उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी गए और उसी भाव से उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ को भी खींचा। वो आनंद का समय था जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रथ जो है चल रहा था और महाप्रभु रथ के सामने नृत्य करते हुए उत्साहित होकर बड़े आनंद से रथ को खींचते हुए ले जा रहे थे, वो आनंद का समय था। अन्यथा बाकी सब समय में चैतन्य महाप्रभु विरह महसूस कर रहे थे। हाँ, जो साधक हैं उनके लिए जगन्नाथपुरी जाना अच्छा है, क्योंकि वहां जाकर वो विरह महसूस कर सकते हैं। किससे विरह? कृष्ण से। लेकिन कौन से कृष्ण से? श्याम सुंदर, जो ब्रज के हैं। आप समझ रहे हैं? तो सेपरेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना सेपरेशन फील किए हम लोग एक इंच भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसका क्या एनालिसिस कैसे करेंगे? इसको तो कैसे आप परखेंगे अपने आप कि आपको कितना सेपरेशन फील हो रहा है कृष्ण से? हो रहा है कि नहीं? आपको माया से सेपरेशन हो रहा है या कृष्ण से हो रहा है सेपरेशन? या आप खुद को परखना है, कुछ हो रहा है या हो ही नहीं रहा कुछ? किसी से भी सेपरेशन नहीं हो रहा, ऐसा हो नहीं सकता। बोलते ना मुझे माया से सेपरेशन हो रहा है, ना कृष्ण से सेपरेशन हो रहा है, ना ऐसा नहीं होता कभी। किसी एक से तो सेपरेशन हो रहा है आप, सो द मोर वी फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा द मोर वी आर एडवांसिंग. सो जगन्नाथपुरी में जाने का ये लाभ है. लेकिन जो आचार्य लोग है, हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वो कभी राधा कृष्ण को अलग नहीं दे सकते, इसलिए उनको नवदीप बड़ा अच्छा लगता है जहां माधुरी या औदार्य प्रदान है. तो नवदीप में अष्टकाली लीला स्मरण होती है, जगन्नाथपुरी में अष्टकाली लीला नहीं है. देयर नो अष्टकाली लीला इन जगन्नाथपुरी. तो ये सब बात थोड़ी गहरी बात है समझने के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है. जो वैष्णव लोग हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये सब समझना जरूरी है. जो भी मध्यम उत्तम लेवल में पहुंच जाता है तब वो समझ पाएगा कि वैसे आदमी का बुद्धि का अर्थ क्या है, जो कि वास्तव में चर्चा का विषय नहीं है. इतना आसान नहीं होगा समझना, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे. तो शुरू में हम लोग इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करें. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन करें, उनके रथ को खींचे, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाए. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, खासकर जब मध्यम अधिकारी कोई बनता है, तो उस समय व्यवस्यात्मिक का बुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा. इम्पॉसिबल. बिना व्यवस्यात्मिक का बुद्धि होए आप अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते हैं, यही रहना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा संसार में. जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाएगी आपको कि आपको कहां जाना है, आप कैसे पहुंचेंगे, प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे शुरू में ही जो भक्त गंभीर हैं, शुरू में ही वो समझ जाते हैं. अगर भक्ति रसामृत तो ग्रंथ पढ़ते हैं तो इस ग्रंथ के माध्यम से एटलीस्ट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. लेकिन एडवांस स्टेज में इन बातों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, होगा भी नहीं वास्तव में. वो एडवांस क्या हुआ फिर, है ना? अगर वो कंफ्यूज है तभी तो एडवांस ही नहीं है. तो वैसे आत्मी का बुद्धि होना जरूरी है. ब्रज में हमें नंदगांव बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है, कोई कहता है ब्रज में हमें गोकुल बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है लेकिन मैं ब्रज में सेवा कुंज ही अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे निधिवन अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे बरसाना अच्छा लगता है. तो इस तरह से लीला स्थली में जब जाते हैं तो इस प्रकार हिंट मिलता है. चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद कहते हैं हिंट है कि आपका स्वरूप कहां पर है. एक भक्त सेवा कुंज में था आखिरी दिनों में, तो कोई महाराज गया, उन्होंने पूछा आप सेवा कुंज में ही क्यों रह रहे हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं, आप सेवा कुंज में क्यों रह रहे हैं, आपकी कोई यहां सेवा है क्या? तो उन्होंने बताया, फिर अपना स्वरूप बताया. तो इस तरह बहुत जरूरी है, प्रेम भक्ति जो है ये बहुत ही एडवांस सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत समझना जरूरी है कि क्या क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उस स्तर पर पहुंच पाए, ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, गोल के बारे में आपके आपको भी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रोसेस भी क्लियर नहीं है तो बहुत दुर्दशा है, बहुत बड़ी दुर्दशा है. इसलिए ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है. साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का, नॉट सेंटिमेंटल. किसी ने कह दिया मुंह हिला रहे हैं, किसी ने कह दिया भोग खा लिया, किसी ने कह दिया बांसुरी गिर गई, ये सब क्या है, ये तो कोई भी बोल सकता है, ये तो कोई भी बोल सकता है आपको. फिर उनमें और हमें हमें अंतर क्या है, ठीक है ना? सो वी शुड नॉट मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस चीप. प्रभुपाद नेवर वॉन्टेड दिस. प्रभुपाद जब एक बार राधा माधव गा रहे थे तो एकदम से स्तब्ध हो गए, है ना? प्रभुपाद की आंखों से आंसू आने लगे, प्रभुपाद ने रोक दिया कीर्तन और भक्तों ने कीर्तन शुरू कर दिया. फिर प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद क्या हो गया था, प्रभुपाद कहते हैं नथिंग इंपॉर्टेंट, चैंट हरे कृष्ण. प्रभुपाद ने एकदम से उसको टाल दिया, एकदम से उसको अवॉइड कर दिया टॉपिक. प्रभुपाद ने नहीं बोला मैं इस लीलाओं का दर्शन कर रहा था, सेपरेशन फील हो रहा था, प्रभुपाद ने वैसे हटे. ये सब चीजें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, नॉट टू बी प्रीच्ड, नॉट टू बी एडवर्टाइज, नॉट टू बी पब्लिसाइज, ठीक है. वो तो बेसिकली भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको ऐसा ही लिखा कि मैं अपने भजन के रहस्य बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने भजन का जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. जिससे रिवील होता है कि भक्ति ठाकुर इस तरह से भजन करते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने प्रमाणित किया, उन्होंने खुद नहीं बोला कि मैं अपना अपने भजन के बारे में लिख रहा हूं, भक्ति ठाकुर ऐसा नहीं लिखा है। और भक्ति ठाकुर ने मान लो लिखा भी है कोई बोलता है तो वो बेसिकली एक क्या है कि भजन का प्रोसेस क्या है वो बता रहे हैं, उसमें किस तरह से भजन किया जाए ये बताया भक्ति ठाकुर ने, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन भक्ति ठाकुर ने भजन रहस्य में कहीं नहीं लिखा कि मैं कौन सा स्वरूप है मेरा और मैं कैसे सेवा करता हूं, ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने। और पब्लिक में है तो कभी कोई बोलता नहीं है ना। इट इज कॉन्फिडेंशियली टोल्ड बट डिसाइपल्स दे प्रीच, इट्स नॉट प्रीच्ड बाय द प्योर डिवोटी। वो नहीं बताता फिर तो हर जगह अनाउंसमेंट नहीं करता वो माइक में, और लोग बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंशियली अगर कुछ होता है बेटर इट इज दैट वी शुड कीप इट कॉन्फिडेंशियल, दैट कृष्णा विल अप्रिशिएट। कृष्णा वॉन्ट्स अस टू बी कॉन्फिडेंशियल, अदरवाइज वॉट इज द डेंजर, यू विल गेट फेम एंड नेम एंड यू विल गेट डिविएटेड बाय द ग्लोरीज ऑफ योर ओन नेम एंड फेम, नॉट द होली नेम। तो ये बड़ा डेंजर है, सब आपकी प्रशंसा करेंगे, सब का गुणगान करेंगे, वो बेचारा नया भक्त है बिगड़ जाएगा, तो उसकी सहायता करनी है। लोग तारीफ करेंगे आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम तो 10 साल से हैं, आप 4 महीने से हैं, फिर भी आपको दर्शन दे दिए भगवान ने, तो फूल जाएगा वो, है कि नहीं। तो ये कृष्ण चाहते नहीं इस तरह से, इट्स नॉट गुड। और कुछ क्या टाइम हो गया, वी शुड प्रीच दैट यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल, यू आर लिविंग लाइक एनिमल, प्लीज बिकम ह्यूमन बींग, then they will take Krishna consciousness very cheaply. They will not chant 16 rounds. They will not follow 4 regulative principles. They will say, aise hi darshan ho jayega, tam bhi darshan kar lenge. And they will wait for darshan. And maybe they will not get darshan for next 30 years. Then they will get frustrated and they will go back. Isliye philosophically jo accept karega Krishna consciousness ko, wo stay karega. Lekin jo sentimentally is तरह से अट्रैक्ट होके अगर आएगा, ही वॉन्ट स्टे लॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइम, देख लीजिए करके आप, है कि नहीं। बोलेगा हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इन्होंने तो बताया था कि ऐसा होता है, बोलेंगे सब झूठ बोल रहे हैं आप, इन्होंने प्रचार के नए हथकंडे अपनाए हैं। एक मीडिया वाले ने पूछा हमसे, ये आपने क्या प्रचार के हथकंडे तो नहीं अपनाए ने? देखिए जैसे ही आपने उसको पब्लिसाइज करना चाहा, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पीपल आर राइदर देन अप्रिशिएटिंग कलयुगा, दे विल क्रिटिसाइज यू, दैट्स अ मिसफॉर्च्यून। पीपल आर सो फॉलन दैट दे विल नॉट ग्लोरीफाई, दे विल क्रिटिसाइज दैट यू आर ट्राइंग टू चीट टू गेट सम नेम एंड फेम एंड टू गेट पब्लिसिटी, यू आर सेइंग लाइक दिस। एंड आज के समय टेक्नोलॉजी के थ्रू, मीडिया के थ्रू ये पॉसिबल है, जब आप बैठे बैठे प्रभुपाद के मुंह को हिला सकते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद का हाथ ऊपर नीचे करा सकते हैं, तो फोटो में क्यों नहीं हो सकता? फोटो में कर देते हैं आजकल तो, वीडियो की बात छोड़े, स्टिल फोटोग्राफ्स में आंखें हिल रही हैं, एनिमेशन देखा ना एनिमेशन, वो इसमें भी कई बार आंखें हिलती है, एनिमेटेड मूवीज है उसमें तो सारा फोटोग्राफ्स ही होता है, वो सारा कैसे मूवीज में हिलता है, आंखें भी हिलती है, डायलॉग्स भी होते हैं उसमें, तो सब कुछ होता है, तो फिर क्या सच है? आप सच है, हम सच है, वो कल दिखाएगा, देखिए हमारे भी ठाकुर जी हिल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको दिखाएगा, और बढ़िया और परफेक्ट वे में दिखाएगा, तो वो बोले वो भक्त है, आप बोलेगा आप भक्त हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब भक्त हैं। फिर कौन असली भक्त है पता नहीं चलेगा। इज दैट सो दीज आर द रीजन द आचार्य दे डू नॉट एनकरेज सच काइंड ऑफ थिंग। हमारे महाराज ने कहा आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। जैसे ही महाराज सुना तो महाराज यही काम, ऐसा विश्वास नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए जो गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं फिर उनका क्या वैल्यू रहा, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी कल फोटोग्राफिक टेक्निक से, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं दिखाते नहीं मूवीज में, चमत्कार दिखाते हैं, हाथ आ जाते हैं एकदम से, हवा में उड़ने लग जाते हैं, सब दिखाते मूवी में, बिल्कुल रियल लगता है। जैसे वो सुपरमैन है, बैटमैन है, वो हवा में उड़ रहा है, वो तो वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन मूवी में इतना रियल लगेगा आपको देखकर, आपको वास्तव में लगेगा स्काई में जा रहा है, बिल्डिंग के ऊपर चला गया, बिल्डिंग से फिर छलांग मार रहा है। बच्चों को कितना अच्छा लगता है सुपरमैन, तो ये भी एक सुपरमैन स्टोरी हो गई। सो वी शुड नॉट बिकम सेंटिमेंटल, दैट इज वाई वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स। जो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं ना रेगुलरली, वो इन चीजों से, इन चीजों का प्रचार नहीं करेंगे। ओनली those who are sentimental, they will start preaching this. It's not good. ठीक है, कहीं एक बार हो जाता, बात सच भी हो सकती है, that's not the point. Krishna और Krishna everything is possible. आज के डेट में भी हो रहा है, होता है, लेकिन not to be preached. So we have to preach pure devotional service as explained by Srila Rupa Goswami. That's why we are known as Rupanugas. We are known as Rupanugas. Why? Because we have to preach in the line of Srila Rupa Goswami, not in your line or my line. ठीक है ना? Srila Rupa Goswami doesn't mention like this in Bhakti Rasam Sutta. He explains you, gives you the scientific process how to advance in spiritual life and how you really can enter the pastimes of the Lord. ठीक है ना? यहां तो भाव भक्ति की अवस्था में बता रहे हैं, साधन भक्ति में तो उन्होंने ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की। अब देखा कोई चर्चा की साधन भक्ति में? भाव भक्ति में बता रहे हैं वो तो, बल्कि कि पांडव लोगों के लिए कृष्ण दूत बन के गए, यहां बता रहे हैं भाव भक्ति के लाल। साधन भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। हाँ वो भी है, स्वयं स्मृति अदा लीलाओं का स्मरण होगा, एडवांस करेंगे तो इस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा ना। श्रवण तो करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो श्रवण तो करना पड़ेगा ना। चेतना का विकास नहीं तो कैसे होगा? कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, उसमें अध्ययन भी आ जाता है। अध्ययन मतलब श्रवण भी है, अध्ययन में श्रवण भी शामिल हो जाता है। तो जरूरी है अध्ययन करना, श्रवण करना, ठीक है। हरे कृष्णा। भक्ति साम सिंधु की, श्री गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। भक्त की जय।